पेज नंबर 228, चैप्टर नंबर 24।
नावल अमर बेल, तसनीफ उमेरा अहमद, सौती पेशकश लिटरेरिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, www.literaria.edu.pk।
चंद घंटों के बाद वो एनजीओ के कुछ लोगों के साथ सियालकोट के एक करीबी गांव में थे। गांव में वो सीधा इस हवेली में गए थे जहां उनके रहने का इंतजाम किया गया था। कुछ देर उन लोगों ने वहां आराम किया, उसके बाद उन लोगों को एनजीओ के जरिए इंतजाम चलने वाले एक स्कूल में ले जाया गया। अलीजा को वहाँ मौजूद बच्चों की तादाद देखकर बहुत हैरत हुई थी। वो स्कूल गांव के ही एक शख्स के घर में कायम किया गया था, जहाँ इस शख्स की बेटी दो शिफ्टों में बच्चों को तालीम देती थी। इस गांव में चंद साल पहले तक गवर्नमेंट की तरफ से कायमशुदा एक स्कूल भी था। एक दफ़ा सैलाब के दौरान स्कूल की चार कमरों पर मुश्तमिल इमारत बह गई। बाद में गवर्नमेंट ने दोबारा स्कूल कायम करने की जहमत नहीं की। बुनियादी वजह यह थी कि स्कूल आने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम थी। गवर्नमेंट का ख्याल था कि करीबी गांव में मौजूद स्कूल भी दोनों गांव की ज़रूरत पूरी कर सकता है। उन लोगों के ग्रुप के साथ चलने वाले गाइड ने साथ चलते हुए उन्हें बताना शुरू किया। गांव वालों ने इसलिए इस पर एतराज़ नहीं किया क्योंकि वो पहले ही यहाँ स्कूल की मौजूदगी को नापसंद कर रहे थे। उन्होंने हिस कम जहाँ पा के मुस्ताक इस इकदाम पर शुक्र अदा किया। ये सिर्फ इसी गांव में नहीं हुआ, आसपास के बहुत से इलाकों में ऐसा ही होता आ रहा था। लड़कों को पढ़ाने पर तो यहाँ के लोगों में फिर भी बहुत कुछ आमादगी पाई जाती थी, मगर लड़कियों के पढ़ाने के बारे में बात भी करने पर ये लोग सर फाड़ने के लिए उठ खड़े होते थे। उनका ख्याल था कि इस तरह ना सिर्फ इनके इलाके की रवायात हो जाएंगी बल्कि औरतें मुँह जोर हो जाएंगी और घर के मर्दों की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। अलीजा दिलचस्पी से गुफ्तगु सुन रही थी। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों के घरों में जाकर उन्हें अपनी बात सुनने के लिए तैयार करना कितना मुश्किल काम था, और इससे भी मुश्किल काम इस इलाके में कुछ तब्दीली लाना था। हमारी वर्कर्स ने यहाँ शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक भी घर घर फिरकर काम किया। अब आप नतीजा देख सकते हैं, ये स्कूल इस इलाके में चलने वाला वाहिद स्कूल नहीं है। आप यहाँ जिस गाँव में भी जाएंगे आपको इस तरह का कोई ना कोई स्कूल काम करता ज़रूर मिलेगा, और सिर्फ स्कूल ही नहीं होगा बल्कि वहाँ बच्चों की खासी तादाद तलीम हासिल करती भी पाई जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि अब इन स्कूलों को कायम करने में बुनियादी हाथ यहाँ के लोगों का हो गया है। वो खुद ही इसके लिए इमारत और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम कर देते हैं। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा हमें टीचर के लिए भी भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। कुछ गाँव में ऐसा भी हुआ कि स्कूल में जब बच्चों की तादाद ज़्यादा होने लगी तो गाँव वालों ने खुद हमसे एक दूसरे स्कूल के क़याम में मदद की दरख्वास्त की। ग्रुप में मौजूद बाकी लोग भी इस तरह दम बहादुर इस शख्स की बातों को सुन रहे थे। तो हम बुनियादी तौर पर जिस चीज़ को करने में कामयाब हुए वो लोगों की सोच में तब्दीली थी। इस वक्त 95 से हमारा अंदाज़ा है कि 2000 तक हम इस इलाके में लिटरेसी का तनासब बहुत ज़्यादा कर देंगे। 95 से 2000 तक के इन 5 सालों में हम इस इलाके के लोगों की सोच में मज़ीद तब्दीलियाँ लाएंगे, और शायद 5 साल बाद इस इलाके को देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि कभी ये इलाका अपनी नाहवानगी की वजह से मशहूर था। तलीम के अलावा यहाँ आमदनी के ज़राए बढ़ाने के लिए हमने इन फैक्ट्री से रबते किए जो यहाँ से घरों में सिले हुए फुटबॉल मंगवाती थी। यहाँ औरतों के लिए ये मुमकिन नहीं होता था कि वो इन फैक्ट्रीज़ में जाकर वहाँ फुटबॉल सीएँ और इस तरह कुछ बेहतर मुआवजा हासिल करें, लेकिन हमने इन फैक्ट्रीज़ को मजबूर किया कि वो इन इलाकों में अपने सेंटर्स कायम करें जहाँ ये औरतें काम करें, और इस तरह ना सिर्फ अच्छा मुआवजा हासिल कर सकती हैं बल्कि उन्हें अपने घर से बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। शुरू में इस काम में भी हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ज़्यादातर इलाके बॉर्डर एरियाज़ हैं और फैक्ट्रीज़ यहाँ से अपने सेंटर्स कायम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि बॉर्डर्स पर टेंशन के ज़माने में ना सिर्फ ये इलाके खाली करवा लिए जाते बल्कि इन सेंटर्स को भी बंद करना पड़ता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़ी फैक्ट्रीज ने हम लोगों के दबाव के तहत यहाँ सेंटर्स कायम किए।
अभी आप मुलाहिजा कर रहे थे नावल अमर बेल, लिटरेरिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड।